लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। प्रभु को कपटी हृदयों से घृणा है, किंतु वह निर्दोषों पर प्रसन्न है। दुष्ट को अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा, किंतु धर्मियों का वंश बना रहेगा। ना समझ स्त्री का सौंदर्य सूअर के थूथन में सोने का नथ जैसा है। धर्मियों के भाग्य में कल्याण बदा है, किंतु विधर्मियों के भाग्य में प्रभु का क्रोध लिखा है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में यह स्मरण दिलाया गया है कि मनुष्य इस बात का ख्याल अवश्य रखे कि ईश्वर को क्या सुग्राह्य है, उसके आचार व्यवहार ऐसे हों जो प्रभु को प्रसन्न हों। वह ईश नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करे और बुराई से बचने के लिए खुद में नियंत्रण शक्ति को सुदृढ़ करे। वस्तुतः ईश्वर के लिए पाखंड और दोहरे व्यवहार से ज्यादा आक्रामक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा दोहरा व्यवहार हमारे ढोंग का परिचायक है। हम न्याय का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तव में अन्यायपूर्ण कामों में लगे रहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे इरादे सही होने चाहिए। दूसरों की मदद का हम ढोंग न रचें और न ही कुटिल तरीकों से अपनी बात मनवाएं, क्योंकि ये तौर तरीके प्रभु ईश्वर को सुग्राह्य नहीं होते। यही सूक्ति ग्रंथ के उक्त पदों में कहा गया है। श्रोताओं, ईमानदारी और सीधे सरल व्यवहार से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वे उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने रास्ते पर सीधी तरह चलते हैं, जिनका लक्ष्य ईमानदारी के साथ काम करना होता है। उन लोगों से जिनकी बातचीत में सादगी है, उन लोगों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं जिन्हें शारीरिक और भौतिक ज्ञान पर गर्व नहीं होता और न ही अपने धन वैभव पर घमंड होता है। ऐसे लोग जो सब कुछ को ईश्वर की देन समझकर उसका मूल्य परखते तथा अन्यों को अपनी देन में साझेदार बनाते हैं, ऐसे ही लोग प्रशंसनीय और ईश्वर को सुग्राह्य होते हैं। 21वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, दुष्ट को अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा, किंतु धर्मियों का वंश बना रहेगा। पाप या दुष्कर्मों को अंजाम देने के लिए बने अपराधी संगठनों को निश्चित रूप से तोड़ा जाएगा और पापियों की रक्षा का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि दुष्कर्मों में लगे लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए समर्थन पा लेने में सफल हो जाते हैं और धर्म की अवहेलना में व्यापार को जारी रखने का संकल्प लेते हैं, फिर भी यह सब उन्हें ईश्वर के न्याय से नहीं बचा पाएगा। वे निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। उनके पास यह बहाना नहीं होगा कि उन्हें बहकाया गया था। वे दंडित होंगे और उस जल प्रलय को देखेंगे जो अधर्मी पुरुषों के लिए दुनिया पर लाया गया था। जबकि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वह निश्चित रूप से धन्य होगा। ईश्वर के नियमों पर चलने वाले हालांकि दुख और कठिनाइयों का सामना करेंगे, तथापि उनका उद्धार सुनिश्चित है।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहारा है, प्रभु ही परम सहायक है। दुर्ग बनाओ शरणागत में, प्रभु ही मेरा रक्षक है। फिर मुझको किस का डर है, फिर झुक जाऊं क्यों कर मैं।
22वें पद में लेखक कहता है, ना समझ स्त्री का सौंदर्य सुअर के थूथन में सोने के नथ जैसा है। श्रोताओ, इन शब्दों में धर्म और सद्गुण को समझने की आवश्यकता है। सद्गुण सम्मान और साथ ही आनंद का स्रोत होता है। इसीलिए लेखक कहता है कि जो स्त्री ना समझ होती है, जिसमें धर्म का विवेक नहीं। वस्तुतः श्रोताओ, यहाँ लेखक ने कहना चाहा है कि शरीर की सुंदरता या सौंदर्य सोने का गहना है, यानी कि एक बहुत ही मूल्यवान चीज है, जिसे प्रलोभनों से बचाकर रखा जाना चाहिए। और जो कोई भी अपने शारीरिक सौंदर्य को बुराई से बचाने में सफल होते हैं, तो उनके लिए उनका सौंदर्य एक अनमोल आभूषण बन जाता है। दूसरी ओर, जो अपने शरीर की परवाह नहीं करते, अपने सौंदर्य को लंपटता और वासनाओं से घिरा रखते हैं, वे ना समझ हैं, मूर्ख हैं। गंदी वासनाओं के दलदल में फंसकर उनका मन अशुद्ध हो जाता है। वे सुअर की तरह कीचड़ में लोटना पसंद करते और ईश्वर के क्रोध का पात्र बनते हैं, क्योंकि धर्मियों के भाग्य में कल्याण बदा है, किंतु विधर्मियों के भाग्य में प्रभु का क्रोध लिखा है। आगे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 23 से लेकर 27 तक के पदों में लेखक कहता है, जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है, जो कृपणता से देता है वह दरिद्र बनता है। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को पिलाता उसे भी पिलाया जाएगा। लोग अनाज के जमाखोर को कोसते हैं और अनाज बेचने वाले को आशीर्वाद देते हैं। जो भलाई करता रहता है उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है, जो बुराई करता रहता है उसका अंत बुरा होगा। श्रोताओ, 23वें पद में लेखक बताता है कि धर्म परायण व्यक्ति की इच्छा क्या है और दुष्ट व्यक्ति की नियति क्या होगी। धर्मी के मन में भलाई होती है, वह अन्यों का अच्छा सोचता है, वह चाहता है कि सबका भला हो, वह किसी के लिए दुख नहीं बल्कि सभी के लिए खुशी की कामना करता है। उसकी इच्छा किसी भी बुरी वासना को संतुष्ट करने की नहीं होती, बल्कि विवेक से काम लेकर शांति बनाने की होती है, ताकि वह ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सके। दूसरी ओर विधर्मी है, जिसकी नियति में प्रभु का क्रोध लिखा है। यहाँ श्रोताओं, एक बात ध्यान में रखने योग्य यह कि हम मनुष्य अपने मन की भावनाओं के अनुकूल बाइबल के शब्दों की व्याख्या करते हैं, और इसीलिए कई बार दुष्ट व्यक्तियों के लिए प्रभु के क्रोध की बात करते हैं, जबकि सच तो यह है कि प्रभु ईश्वर प्रेमी पिता हैं। वे दयावान और कृपावान ईश्वर हैं। वे मनुष्यों पर क्रोध नहीं करते, बल्कि अनवरत उन्हें सीधे मार्ग पर चलने का मौका दिया करते हैं। सूक्ति ग्रंथ का लेखक भी मानवीय भावनाओं के अधीन रहकर दुष्ट व्यक्ति का अंत किस प्रकार होगा उसका वर्णन करता है। वह सचेत करता है कि दुष्ट कामों में लगने वाले अपना ही अहित करते हैं, क्योंकि दुष्ट कर्मों का अंजाम बुरा होता है। फिर 24वें और 25वें पदों में लेखक कहता है, जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है, जो कृपणता से देता है वह दरिद्र बनता है। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को पिलाता उसे भी पिलाया जाएगा। श्रोताओ, ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति उसके पास जो कुछ भी है उसे विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करके अमीर बन सकता है, धर्मपरायणता दान और उदारता के कार्यों में लग सकता है, और उसी तरह से बढ़ सकता है जैसे गेहूं का दाना बोने से बढ़ जाता है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद पूर्वक उपयोग करने से हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है। इसलिए यह ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह बढ़ जाता है, हम दान देने से कतराएं नहीं। नाम कमाने या दिखावे के लिए दान नहीं दें, बल्कि मन से किसी की मदद करने के लिए दान दें और ईश्वर के आशीर्वाद के हकदार बने। कुरिन्थियों को प्रेषित दूसरे पत्र के 9वें अध्याय में संत पॉल धर्म ग्रंथ में लिखे कथन का स्मरण दिलाकर लिखते हैं, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, दुर्ग बनावो शरणागत में, प्रभु ही मेरा रक्षक है,
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने लचीलापन एवं जलवायु परिवर्तन पर वैटिकन सम्मेलन के प्रतिभागियों को संदेश भेजा है तथा सभी देशों से अपील की है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने एवं लोगों को जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु मदद करने के लिए एक साथ कार्य करें। विज्ञान के लिए बनी परमधम पीठे अकादमी ने वैटिकन के कसिनो पियो चौथे में 13 से 14 जुलाई को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। बुधवार को जब सम्मेलन की शुरुआत हुई तो संत पापा फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा जलवायु संकट पर विचार विमर्श करने हेतु उनके प्रयास को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन की घटना एक आपात स्थिति बन गई है जो अब समाज के किनारे नहीं रह गई है, किंतु इसने न केवल औद्योगिक और कृषि प्रणालियों को फिर से आकार देने और वैश्विक मानव परिवार, विशेष रूप से गरीबों एवं हमारी दुनिया की आर्थिक परिधि पर रहने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, बल्कि एक केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लिया है। संत पापा ने कहा कि दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करके जलवायु खतरे को रोकने और लोगों को जलवायु में उत्तरोत्तर बिगड़ते परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम बनने की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। ये चुनौतियां हर एक व्यक्ति से मांग करती हैं कि हम लोगों और ग्रह की रक्षा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। संत पापा ने पारिस्थितिक बदलाव के लिए अपने बार बार आह्वान का संदर्भ दोहराते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के लिए सभी को ईश्वर की रचना के लिए आभारी होना है, एक दूसरे के साथ रहना और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए मिलकर काम करना है। हम जिन बढ़ती समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका ठोस समाधान पाने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नेताओं को साहसी सहयोग और दूरदर्शी प्रयास की जरूरत है। संत पापा ने कहा है कि स्वच्छ पेयजल और ऊर्जा तक पहुंच एक दूसरा मामला है जिस पर नेताओं को विचार करना चाहिए, साथ ही किसानों की मदद पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे अधिक अनुकूल फसल उगा सकें। उन्होंने गौर किया कि परमधम पीठ हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन और पेरिस समझौते में शामिल हुआ था। वैटिकन विदेश सचिव महाधमदश पॉल रिचर्ड गलाघर ने कहा है कि संत पापा फ्रांसिस यूक्रेन के कीव शहर जाना चाहते हैं, लेकिन यह कब और कैसे होगा इसका पता नहीं है। उन्होंने कूटनीतिक विफलता पर भी प्रकाश डाला है कि युद्ध को टाला नहीं जा सका, जबकि हिंसा एवं विरोध के चिन्ह इसकी चेतावनी दे रहे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महाधव मदोश ने पुष्ट किया कि संत पापा आक्रमण के शिकार देश की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने युद्धग्रस्त देश में अपनी यात्रा पर चिंतन किया तथा इसे कूटनीतिक विफलता कहा, जिसमें युद्ध को रोकने के लिए चेतावनी के चिन्हों के बावजूद युद्ध रोकने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की गई। महाधव मदोश ने अपील की है कि युद्ध को न भुलाया जाए और लोग इसके आदि न बन जाएं। यूक्रेन में अपनी यात्रा की याद करते हुए वैटिकन अधिकारी ने कहा कि सौभाग्य से उन्हें कीव जाने का अवसर मिला था जब वहां शांति थी, जबकि उनकी यात्रा के पहले और बाद में बमबारी हुई। उन्होंने कहा, मैंने यूरोप में युद्ध के बीच खुद को पाते हुए निराशा और अविश्वास महसूस किया। मैंने विनाश, सुरक्षा और वह सब कुछ देखा जो हमारे लिए एक कलंक है। मैंने लोगों को विरोध करते देखा जो लड़ने और जीतने के लिए तैयार थे। यह सब कुछ हमारे समय में घटित हो रहा है, जबकि हम सोचते थे कि यूरोप के लिए युद्ध समाप्त हो चुका है। एक राजनायक के रूप में महाधव मदोश ने स्वीकार करते हुए कहा कि हमें असफलता को स्वीकार करना चाहिए। यूक्रेन बतलाता है कि हमें संघर्ष का पूर्वानुमान करना चाहिए था। राजनायक को इस बात को देख सकना था कि दुनिया में कितनी गंभीर बात चल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करनी चाहिए थी। यह सब हमारी विफलता है। शायद हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर हम हिंसा के सामने चुप नहीं रह सकते। यूरोप के कई देशों की सराहना करते हुए धर्मदर्श ने कहा कि हम त्रासदी के प्रति उदासीन नहीं हैं। पूरे यूरोप में यूक्रेन वासियों को स्वीकारा गया है। महाधव मदोश ने कहा कि एक पुरोहित के रूप में मैं इस बात को याद रखना जरूरी समझता हूं कि मेल मिलाप एवं क्षमाशीलता के संदेश को नहीं भूलना चाहिए, चाहे पीड़ा बहुत अधिक क्यों ना हो। फौस्ता स्पेरांसा द्वारा लिखी किताब प्यास की चेतना भू राजनीति अधिकार कला और आध्यात्म के बीच पानी के विमोचन के अवसर पर वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यूक्रेन अफ्रीका में अपनी यात्रा और वैटिकन के धर्मदर्श विभाग में 3 महिलाओं की नियुक्ति पर प्रकाश डाला। कार्डिनल परोलिन ने बुधवार को पत्रकारों के सामने यूक्रेन की स्थिति, अफ्रीका में पिछले दिनों अपनी यात्रा और वैटिकन कोरिया में 3 महिलाओं की नियुक्ति पर चर्चा की। वैटिकन राज्य सचिव ने यह बात रोम में परमधम पीठ के लिए इतालवी राजदूत आवास में कही, जहां वे जल संकट पर अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे। कार्डिनल परोलिन ने कहा, संत पापा यूक्रेन जाना चाहते हैं और वे जितनी जल्दी हो सके वहां जाएंगे। कार्डिनल ने इस बात की भी पुष्टि दी कि संत पापा युद्ध से पीड़ित लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करने के लिए कीव जाना चाहते हैं, किंतु इस समय कनाडा में आगामी प्रेरित यात्रा महत्वपूर्ण है और यह निश्चित हो चुकी है। यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक स्तर पर प्रभाव तथा इसके कारण यूरोपीय सरकारों में उथल पुथल के बारे किए गए सवालों का उत्तर देते हुए कार्डिनल ने कहा, मेरा मानना है कि वर्तमान विश्व परिदृश्य में सरकार जितनी अधिक स्थिर होती है, उतनी ही अधिक वह कई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती है। ये युग की चुनौतियां हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस युद्ध से भोजन और ऊर्जा दोनों के मामले में एक संकट पैदा हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति की जिम्मेदारी लेता है तो समाधान निकल सकता है। हम सभी को विभाजित नहीं बल्कि एक साथ कार्य करना चाहिए। पिछले दिनों अफ्रीकी देशों में अपनी यात्रा के बारे कार्डिनल ने कहा, मैं कोंगो और दक्षिण सूडान गया था ताकि मैं दोनों देशों के लोगों को यह यकीन दिला सकूं कि संत पापा वहां जाना चाहते थे। यात्रा सिर्फ उनके स्वास्थ्य की स्थिति के कारण से स्थगित हो गई। कार्डिनल परोलिन ने वैटिकन के धर्माध्यक्ष विभाग में 3 महिलाओं की नियुक्ति पर अपना विचार प्रस्तुत किया, जिनकी नियुक्ति की घोषणा बुधवार को हुई। उन्होंने कहा कि महिला जगत के लिए कलीसिया का खुलापन जारी है। उन्होंने गौर किया कि इस कार्यालय के लिए अब तक किसी महिला की नियुक्ति नहीं की गई थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।